हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी वाणी से हमें अपना संदेश दें, सब जीवों के कल्याणार्थ प्रवचन दें। परम पूज्य गुरुदेव,
जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनी दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान, इन दोनों से समन्वित हमारा जीवन हो, इस बात पर विचार किया है। दृष्टि की निर्मलता से हमें अपने आत्मकल्याण की दिशा मिलती है, आत्मज्ञान से हमें उस दिशा में किस तरह से चलना चाहिए इस बात की समझ उत्पन्न होती है। और इसके बाद एक और प्रयत्न जो शेष रह जाता है कि हम धीरे धीरे श्रद्धा और आत्मज्ञान के बल पर अपने आचरण को उन्नत बनाएं, सबलिमाइजेशन यानी उदात्तीकरण, अपने जीवन का उदात्तीकरण करें, अपने जीने के ढंग को इस तरह से बनाएं जिससे कि हमारे साथ साथ दूसरे जीवों का भी भला हो। वास्तव में श्रेष्ठ आचरण वही माना जाता है जिसमें हम अपना और दूसरे का उपकार करते हैं। आचार्य भगवंतों ने जितने भी आचरण को ठीक बनाने के नियम, व्रत इत्यादि रखे हैं, उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा कि जो इन नियमों का, जो इस कोड ऑफ कंडक्ट का खुद पालन करता है, वो अपने जीवन को ही नहीं अपने आसपास के परिवेश को भी बहुत अच्छा बनाने में सहयोगी बनता है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयां देखी, हमारा मन कभी कभी दूसरे को क्षति पहुंचाने का हो जाता है, हमने सोचा है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा मन कभी कभी मिथ्या व्यवहार करने का हो जाता है, हमारी वाणी से भी मिथ्या वचन निकल जाते हैं, वो भी हमारे जीवन को पतित करने वाला है, ऐसा हमने बहुत प्रकार से विचार किया है और सोचा है कि अब हमारे व्यवहार में जितनी सच्चाई हो सकेगी हमारी वाणी में जितनी सच्चाई हो सकेगी हम उस बात का प्रयत्न करेंगे। हमारी संपत्ति तो हमने अपने परिश्रम से संचित की है, उस पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि दूसरे की संपत्ति पर भी हमारा अधिकार हो जाता और उसको जो हड़पने और छीनने का भाव मेरे मन में आता है वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं उससे भी अब धीरे धीरे अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयत्न करूंगा। मेरी दृष्टि भी लोगों के प्रति कभी कभी खराब हो जाती है, मेरे मन में कुछ दुर्भावनाएं मेरे को घेर लेती हैं, वो भी ठीक नहीं है। सबके प्रति प्रेम भाव मुझे रखना चाहिए, किसी के प्रति भी मेरे मन में दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। मुझे पंचेंद्री के विषयों में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं उस आसक्ति के वशीभूत होकर के दूसरे का बिगाड़ कर सकूं और अपना स्वयं का जीवन भी तहस नहस करूं। इसलिए अब पंचेंद्री के जो विषय हैं उनसे धीरे धीरे मैं अपने को अलग करने के लिए अभ्यास करता हूं। और अंत में हमने यह भी सीखा है कि बहुत अधिक धन संचय से तो उसके संचय करने की भी मुश्किल, संचय करने के बाद संरक्षण की मुश्किल और उसको और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न, वो भी संक्लेश का कारण। और जब एक दिन सारी संपत्ति छिन जाती है या हम ही नहीं रह जाते हैं, संपत्ति रखी रह जाती है, दोनों स्थितियों में आखिर होगा क्या? जितना हमको आवश्यक है उतना ही रखेंगे। अब अधिक संचय करके रखना अब बुद्धिमानी नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा विचार करके हमने अपने धन संचय की भी एक सीमा निर्धारित कर ली। ये अपने जीवन को एक दिशा देने का, अपने जीवन को एक अनुशासित करने का हमने उपक्रम किया है। और अब तो हमने ऐसा भी सोच लिया है कि बहुत दौड़ धूप करने से क्या फायदा, जब इतना ही अपना जीवन है और उतने थोड़े से में अपने जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो अब ज्यादा दौड़ धूप नहीं करेंगे, ज्यादा आवागमन नहीं करेंगे, अब सीमाएं अपनी दसों दिशाओं में निर्धारित कर लेते हैं। इससे ज्यादा अब व्यापार इत्यादि के निमित्त से अपनी आजीविका, दो रोटी कमाने के लिए इतनी दौड़ धूप करने का क्या मतलब है? एक निश्चित सीमा के भीतर रह करके ही जितना अपना जीवन के लिए आवश्यक है उतना हम करेंगे। इस तरह अपने इन जीवन को अच्छे बनाने के नियमों में हमने एक नियम और शामिल किया था। अब तो ऐसा लगने लगा है कि इस सीमा के भीतर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं करता हूं जिनको कि करने का कोई प्रयोजन नहीं है। सहसा नहीं मालूम पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूं वो प्रयोजन भूत नहीं है, पर थोड़ा सा जब विचार करते हैं तो अपने आप लगने लगता है कि बहुत सी चीजें सुबह से शाम तक ऐसी होती हैं जो कि प्रयोजन भूत नहीं होती हैं, जिनका करना दूसरे और हमारे दोनों के लिए लाभकारी नहीं है बल्कि अनर्थकारी है, एब्सर्ड बोलते हैं, एमलेस, अनर्थ। एक तो होता है यूजलेस, जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, और एक होता है एमलेस, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसको करने से कोई लाभ नहीं होने वाला बल्कि अहित ही होने वाला है। तो ऐसे मन वचन काय की ऐसी प्रवृत्ति को जो कि एमलेस है, यूजलेस है, या कि हमारे और दूसरे के अहित करने में कारण है, मैं अब अपने मन वचन काय की उस प्रवृत्ति को भी रोक लूंगा। इसको रोकने के लिए बहुत विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अधिक संस्कार है मन का, वाणी का और शरीर का, कि हम इनसे कब क्या कर बैठते हैं और हम अनजाने में और सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लेने के बाद भी कभी कभी तो एहसास होता है और जब तक देर हो चुकती है, और कभी कभी तो किसी किसी को एहसास भी नहीं होता कि हमने जो करा है वो हमारे जीवन को ही क्षति पहुंचाने वाला है या दूसरे के जीवन को तो क्षति पहुंचाने वाला है ही। आचार्य भगवंतों ने पांच प्रकार से हमें ये बात समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि मुझे तो लगता है कि इसी व्रत से प्रेरित होकर के और गांधी जी ने अपने तीन बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। शायद इन पांच बातों को ही इन तीन में समाहित करके और उन्होंने ये मैसेज सारे देश को दिया हो। आचार्य भगवंतों ने हमारे इस मन, वाणी और शरीर से होने वाली जो दुष्प्रवृत्ति है, जिसको रोकने के लिए उन्होंने पांच बातें कही हैं कि कभी भी स्वयं तो हमने दूसरे के जीवन को क्षति पहुंचाने से बचने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी आदत बस ऐसा ना हो जाए कि हम दूसरे को ऐसा उपदेश देने लगें जिससे कि वो पाप में प्रवृत्त हो जाए। ऐसा हो जाता है, अपन जिन चीजों को छोड़ देते हैं उसके बाद भी अपन नहीं करते हैं पर दूसरे से करने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हैं। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ पाता, ऐसा कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे मन का भी चोर है। हम स्वयं तो पापों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब अपना कोई काम होता है तो दूसरे को और वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित कर देते कि देखो हमारा तो अब हमने छोड़ दिया है चोरी वगैरह करने का, लेकिन तुम तो कर सकते हो अभी, इसको ये ऐसे करना चाहिए, इसमें मिलावट ऐसे करनी चाहिए, इस सामान को ऐसे बेचना चाहिए। हाँ, ये ऐसे अपन बैठे बैठे उसको जो कहना चाहिए पाप में प्रवृत्त करने वाली चीजें हैं इनका उपदेश सहज रूप से दे देते हैं, अननोनली जिसको कहें अपन, बिल्कुल गैर जानकारी में भी दे देते हैं कि कर क्या रहे हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है हमारे जीवन से, उसका कोई लेना देना नहीं, पर भी बैठे चार लोग बैठ जाते हैं और चर्चा छिड़ जाए तो ऐसी ऐसी बातें उसमें निकल आती हैं कि दूसरे को और पाप करने की प्रेरणा मिल जाती है। अपन ने जो पहले किया है और किस स्टाइल से किया है और कैसे हम उससे बच गए हैं वो भी सुनाते हैं तो दूसरे को लगता है कि हम भी ऐसा करके देखें, ये आज होता क्या है, इसी तरह तो होता है। एक दूसरे से सुन सुना करके उसने ऐसा करा था और उसको इतना बेनिफिट हुआ और वो बच भी गया, और ये अपन भी करके देखें, ये क्यूरोसिटी होती है हर आदमी के मन में होती है। ऐसी चीजें जो दूसरे को पाप की तरफ प्रेरित करने वाली हैं, ऐसा उपदेश नहीं देना। आज वर्तमान में ऐसा उपदेश देने के बहुत से साधन हैं, टेलीविजन तो सबसे बड़ा साधन है, कितनी सारी तो इस आइडियाज हमको मिलते हैं उसमें, जीवन के कल्याण के आइडियाज तो कम मिलते हैं, संसार बढ़ाने के कितने सारे आइडिया मिलते हैं उसमें, ऐसा करो तो ये हो सकता है, ऐसा करो तो ये हो सकता, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये लॉसेस हैं, इन सब से बचो ऐसे करके, ये सब जो है क्या चीज है, व्यर्थ, जिसका कोई उपयोग नहीं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी इस तरह कभी बैठेंगे तो दूसरे के यहां जाएंगे तो उसको भी इसी तरह का, अरे आपने जो है इस तरह से सीढ़ियां बनवाई, ये स्टेप तो आपके जरा ऊंचे ऊंचे हो गए, आप जरा इनको ठीक करवा लीजिएगा, छोटे स्टेप, और यहां से रोशनी नहीं आती आपके यहां पर, कैसे आप हार वगैरह करवाओगे, महाराज को रोशनी आना चाहिए पूरी, आप यहां खिड़की बनवा लो एक। ये क्या है भैया, ऐसे सहसा नहीं मालूम पड़ता, पर ये पापोपदेश है, वो आरंभ सारंभ करेगा उस सब का आपके मध्य आएगा क्योंकि सलाह आपने दी थी। ये बात कठिन है, इसको अनर्थ दंड कहते हैं। दंड का मायना होता है मन वचन काय की क्रिया, और अनर्थकारी मन वचन काय की क्रिया से विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत। आचार्य भगवंतों ने इतना इतना जान करके ये चीज हमें बताई है कि बिना प्रयोजन के भी अपना कोई काम नहीं हो रहा, अपने घर में कुछ नहीं बना रहे आप, लेकिन दूसरे के यहां जाकर के उसको सलाह दे रहे हैं कि ये ऐसा नहीं, इसको ऐसे बना लेना ये, और इसमें तो सुनो ये वास्तु की वजह से ये दोष है, इसको जरा ऐसे ठीक करवा लो, ये ऐसा बहुत कठिन है। व्रति व्यक्ति के लिए अगर उसने अपने जीवन में ये व्रत धारण कर लिया है तो फिर वो इस तरह की सलाह नहीं देगा। ये सब आरंभ और परिग्रह जोड़ने वाली सलाह है जिसको पापोपदेश कहेंगे। इतना ही नहीं, हिंसा दान, ऐसी चीजें जिससे कि दूसरे के प्राणों का घात हो सकता है, ऐसी चीजें दूसरे के हाथ में नहीं देना। यहां तक कि लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने जीवन को अनुशासित बना लेता है, वो गैर अनुशासित और लापरवाह व्यक्ति के हाथ में सुई भी नहीं देता और माचिस की तीली भी नहीं देता। हां, क्योंकि एक लापरवाह व्यक्ति के हाथ में अगर ये चीजें चली जाएंगी तो जैसे बंदर के हाथ में मोती की माला, उसको तो चने से मतलब है, मोती चने जैसे लगते तो खा खा के देखता और फेंकता चला जाता। ऐसे ही आपने दी थी दिया सलाई कि घर में जाकर के और दीपक जलाएगा रोशनी के लिए, और हो सकता है कि वो आग लगा दे दूसरे के घर में, आपकी दिया सलाई उसमें कारण बनेगी। तो ऐसे अनुशासित व्यक्ति को तो दे सकते हैं, आपस में जो अनुशासित हैं जिनके बारे में कंफर्म है कि ये इसका मिसयूज नहीं करेंगे उन्हें तो देना ठीक है, लेकिन आपस में जिसको हम जानते हैं कि ये इसका मिसयूज कर सकता है उसे नहीं देंगे, इतना तक आचार्य भगवंतों ने हमें अपने मन वचन काय को संभालने के लिए, इस प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए कहा है। आज वर्तमान में कितनी ऐसी चीजें हैं दूसरे को बंधन में डालने वाली, जंजीर इत्यादि नहीं बेचना कहते हैं, जिससे दूसरे जीवों का घात हो ऐसी चीजें नहीं सेल करना। आने वाले पर्युषण के दिनों में दशलक्षण में मैंने पहले के जमाने में देखा है, अपने साथ अपने सामने देखा है, मेरा जमाना बहुत बड़ा ज्यादा नहीं गुजरा है, आप में से बहुत लोगों के जिनने की और पहले देखा होगा, दशलक्षण के दिनों में अगर कोई अपने दुकान में साबुन भी बेचता होगा तो साबुन उस 10 दिन में बेचना बंद कर देगा। बताइए क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जीव राशि का घात हो सकता है, कोई उसका मिसयूज करेगा, सावधानी नहीं रखेगा अगर तो वो पानी नाली में जाएगा तो बहुत सारे जीव उससे विघात को प्राप्त होंगे, इतनी सावधानी रखते थे। आज तो वर्तमान में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब मार्केट्स में आ गए हैं, और अपन जो बेचने वाले हैं वो किस तरह से गारंटी देते हैं कि विद इन 5 मिनट्स आप यूज करके तो देखें, 5 मिनट में सब मामला। हां बताइएगा, ये गारंटी देते हैं अपन। तो जितने भी ये कस्टमर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, ये सब उसमें शामिल हैं, सब उसी हिंसा दान के पाप से लिप्त, खरीदने वाले से लेकर बेचने और बनाने वाले तक। बताइए कैसे अपना जीवन ऊंचा उठ पाएगा जब अपन इन सब चीजों में इतने इंडल्स हैं, इतना लगे हुए हैं। अपन सोचते जरूर हैं कि थोड़ा सा मंदिर में पूजा पाठ करने से काम हो जाएगा, इतने से नहीं होगा, और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा भैया। हाँ, अब ये इतने से नहीं चलेगा, इतना तो कर लिया अपन ने, बढ़िया से पूजा पाठ भी कर ली है और बढ़िया स्वाध्याय वाध्याय भी सुबह दोपहर शाम 3 समय बिल्कुल स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन घर में पहुंच करके और इतनी चीजें करते हैं, इतनी मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति है कि उसको उसको मिटाने के लिए घंटे भर की पूजा ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाएगी। इसका या तो टाइम बढ़ाओ भाई, 2-3 घंटे की पूजा करो, हाँ, और या फिर वहां पर घटाओ। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, ये बैलेंस तो करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसे बैलेंस भी नहीं होता, जितना अपराध किया है वो अपराध की तरह ही फल देगा और जितना धर्म ध्यान किया है वो धर्म ध्यान की तरह फल देगा, दोनों में ऐसे नहीं हो सकता कि बैलेंस शीट बने कि डेबिट क्रेडिट और आखिरी में बैलेंस, यहां ये नहीं होता, यहां तो जो किया उसका फल पूरा भोगना पड़ेगा। तो जरा जो जिसका फल मुझे भोगना अच्छा नहीं लगता है तो उस मन वचन काय की प्रवृत्ति को कम कर लेना ही ज्यादा बेहतर है, और कम करने का सबसे अच्छा ढंग है कि मैं शुभ प्रवृत्ति में लग जाऊं ताकि मैं इस अशुभ प्रवृत्ति से बच जाऊं, मैं अपने इस तरह से मन वचन काय की क्रियाएं करूं जिससे कि मेरे जीवन में अशुभ होने के चांसेस ही कम हो जाए, ऐसा अवसर ही कम हो जाए, मैं अपने जीवन को ऐसे अनुशासित करूं। ये भी एक उपाय है, पापोपदेश, हिंसादान, और फिर कहते अपध्यान, ये और ज्यादा खतरनाक। इसमें देला लेना कुछ नहीं है, इसमें तो कोने में बैठे बैठे ये आराम से चलता रहता है। अपध्यान, काहू की धनहानि
किसी जय हार न चिंते, हो सकता कि ये लाइन पढ़ते पढ़ते भी चिंते वही। हाँ, काहू की दनहान किसी जय हार न चिंते, ये लाइन पढ़ते पढ़ते भी दूसरे का ऐसा हो जावे, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देशवश दूसरे के अपकार का भाव रखना, मनी मन प्लानिंग करना कि कब मैं उसका बिगाड़ कर सकूं। बिगाड़ करने के अलग अलग ढंग है भैया, जैसे किसी की बढ़ोतरी देख करके कैसे उसके पैर खींच के गिराया जा सके, ये सब भी उसमें शामिल है। ये अपध्यान है। और या कि रागवश दूसरे की धन संपत्ति या कि और कोई चीज, उस सब को मैं कैसे अपना बना सकूं, ये भी जो है अपध्यान है। बैठे बैठे ये आराम से चलता रहता है। आजकल तो बहुत साधन है इसके, सबसे अच्छा साधन है टेलीविजन। हाँ, इसको करने का अपध्यान, बैठे बैठे अब देख रहे हैं उस पर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वहां वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन यहां भी वर्सेस पाकिस्तान चले व्यर्थ में, ये हार जावे वो जीत जावे, जबकि होना जाना कुछ नहीं, दोनों मजे में है। हारने वाले को भी पूरे पैसे मिलते हैं, जीतने वाले को पूरे पैसे मिलते हैं, उनका कुछ ज्यादा लॉस नहीं होता, ना उनको कोई देश की कोई बहुत बड़ी भावना है। थोड़े मोड़े लोग हैं जिनको कि खेल के पीछे देश की भावना होगी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अपने देश के जीतने में खुश होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप ऐसा अर्थ ले लें। बाकी अधिकांश तो इस तरह से देख करके अपना देश ही डेवलप करते हैं, देश ही विकसित होता है। बताइए इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है, ये पार्टी हार जाए वो जीत जाए, जबकि है सब चट्टे बट्टे के सब एक ही, बे जीत जा सुबे अपने मन की करत, जी हार जा सुबे उनकी छीछालेदारी करत, सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाते उठाते रहते हैं और कुछ नहीं करते। हम तो देखते हैं वर्तमान में, और अपन जबरदस्ती में बैठे बैठे कि जी जीत जाए और जी हार जाए, बाकी उनको जो कछु है सो कन नहीं, उनको हमारी कछु चिंता नहीं है। हमारे घर के बाहर गंदगी पड़ी होगी तो कछु ने प्रधानमंत्री आके साफ कर रहे हैं, ने कोई और आ रहा हो, कन्ने अपने ही को पड़े, और बेकार में चिंता अपन उन तक की कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, अपने जीवन को एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी ये आवश्यक है कि हम अपना जीवन और अपने आसपास का परिवेश अच्छा बनाएं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं किसी के भी हार जीत में और किसी के भी लाभ हानि में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं अपना जीवन ठीक ढंग से जीऊं तो मेरे द्वारा किसी की हानि नहीं होगी, और मेरे जीवन से मैसेज मिलेगा दूसरे को भी अपने जीवन को ढंग से जीने का, तब फिर उसका लाभ ही होगा, उसकी हानि क्यों होगी। और मेरे सोचने से किसी की लाभ हानि नहीं होती भैया, उसकी लाभ हानि, उसकी जय पराजय उसके अपने कर्मों से होती है, मेरे सोचने से नहीं होती। बुंदेलखंड में कहावत है कि कौवा के कोसे से ढोर नहीं मरत, ऐसी कहने लगा। ये क्या चीज है, जिनने ये कहावत बनाई होगी उनके उनने कितनी बड़ी अपध्यान से बचने की बात कह दी होगी कि व्यर्थ में हम दूसरे के लिए उसके घात का विचार करते हैं, उसके अपकार का विचार करते हैं, और अपना ये निष्प्रयोजन पाप है जिसका हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में कोई भी लाभ नहीं होने वाला, ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति बैठे बैठे अपन करते रहते हैं, इससे बचना चाहिए। और फिर कह रहे हैं दुश्रुति, इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। हाँ, ये तो सभी की आदत है, मैं भी हो सकता है कि उससे ना बचा हूं, थोड़ी थोड़ी कोशिश में हूं कि इससे बचूं। अपनी आत्म प्रशंसा सुनने की और दूसरे की निंदा सुनने की तो सबकी प्रवृत्ति, कौन को का चल रहा है, कौन के लूपोल्स कौन से हैं, कौन की कमजोरियां कौन सी हैं, ये मालूम पड़ जावे और फिर उसको मैं फैलाऊं और उसका मजा लेऊं बैठे बैठे, ये सब दुश्रुति है। दूसरा कोई अगर किसी की निंदा करे तो उससे स्पष्ट कह दें हम कि ये कान मुझे इसके लिए नहीं मिले, आपको अगर निंदा करनी है उसी से जाके कहो ना, जिसके बारे में आपको ये बातें मालूम पड़ी। मैं कौन होता हूं, मेरे से क्यों कह रहे हैं? ये बहुत कठिन है, अपन तो और धीरे से खिसक जाओ तो ही उतना ही और खिसक जात का है। का होगा? अच्छा, और का होगा? हो और खोद खोद करके फिर और क्या हुआ था, फिर और क्या हुआ था, सब जान लेंगे। ये दुश्रुति अच्छी बात नहीं, अच्छी बात खोद खोद के नहीं पूछेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो उसको खोद खोद के पूछेंगे। उसमें सुनने में रुचि है, शास्त्र के सुनने में उतनी रुचि नहीं होगी, अपने प्रयोजनभूत सात तत्वों के बारे में सुनने की उतनी रुचि नहीं होगी जितनी कि इस तरह की बातें सुनने में मेरे कान हमेशा रुचि लेते हैं। ये मेरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है ऐसा मेरे अंदर में लगने लगे तब फिर हो सकता है कि सुधर जाए। अभी तो संस्कार वही है, अभी तो कहां कहीं अगर अपनी प्रशंसा हो रही हो तो खिसक जाते हैं कि हाँ बढ़िया अच्छा है, और कहीं दूसरे की निंदा हो रही हो तो भी अपन उसमें रुचि लेने लगते हैं। और ऐसे शास्त्र इत्यादि पढ़ना जिससे कि संसार बढ़ता हो, ऐसी बातें सुनना या ऐसी बातें सुनाना, या ऐसे शास्त्र इत्यादि पढ़ना, ऐसी किताबें पढ़ना जिससे कि संसार बढ़ता हो, जिससे पांच इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति बढ़ती हो। प्रथमानि योग नहीं पढ़ेंगे जिनसे कि पांच इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्ति होती है और बाकी और दूसरी चीजों में ज्यादा समय हम दे देते हैं जो निष्प्रयोजन है, जिससे कि हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला बल्कि हमारे परिणाम और बिगड़ने वाले हैं। ऐसी चीजों को न सुनना, न पढ़ना, न दूसरे को सुनाना, ये दुश्रुति कहलाती है। और प्रमादचर्या तो मंदिर में देखता रहता हूं, जरा सा भी अपन को संयम नहीं है उतनी देर का कि गर्मी लग रही है तो फौरन आते ही साथ सबसे पहले पूजा, बाद में सामायिक, बाद में माला, बाद में पहले बटन पंखा, फिर उसके बाद माला, फिर बाद में पूजा। बिना पंखे के तो कर ही नहीं सकते, गर्मी बहुत लग रही है। अब बताइए, वो जो वायु का एक जीवों का घात हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताएं। आपको तो ठंडी हवा सुख दे रही है, लेकिन जिन वायु का एक जीवों के प्राणों का भार घात हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? घर में एक बाल्टी पानी से काम चलने वाला है लेकिन 10 बाल्टी उसकी जगह पर उपयोग करते हैं, नल खुला हुआ है तो खुला हुआ है, जल कायक जीवों की विराधना हो रही है तो हो रही है, बिजली जली है तो जली है, बंद करने का भी भाव नहीं है। अग्नि कायक जीवों का विघात होता है। घर में गार्डन लगा लिया है, बहुत बढ़िया वनस्पति, उसमें पानी दे रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसे सुंदर लगना चाहिए इसलिए मशीन लेकर के उसकी काट छांट कर रहे हैं। ये सब क्या चीज है? ये सब प्रमादचर्या, निष्प्रयोजन पाप है। इससे हमारे जीवन में कुछ नहीं सधता, सिर्फ व्यर्थ ही। या फिर चलो अपन घूम करके आते हैं, घूमने जा रहे हैं, कश्मीर घूम करके आते हैं, वाटरफॉल देख करके आते हैं, ये सब प्रमादचर्या है, ये ध्यान रखना। अब आप करते हो तो जानो, आप जानो, मैं कौन होता हूं आपको मना करने वाला, पर जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं। कोई प्रयोजन उससे नहीं हुआ सिद्ध। शाम को चलो ऐसे ही घूमने ही चलते हैं, एक उधर घूम करके आ जाएं, क्या चीज है? स्वयं भी और दूसरे को भी प्रेरित करना इस तरह से। निष्प्रयोजन घूमने गए आप, मॉर्निंग वॉक पे गए हो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से वो अलग है, लेकिन बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, ये निष्प्रयोजन पाप है। दो लोगों का उदाहरण आपको दूं, दोनों अच्छे लोग हैं इसलिए दोनों के उदाहरण मुझे अच्छे लगते हैं। यशपाल जैन अब तो नहीं रहे, गांधी जी के
तीन लोगों में उनका भी नाम था, यशपाल जैन, अक्षय कुमार जैन और जैनेन्द्र कुमार जैन। ये तीन लोग थे जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करते रहे। इन पर हमें गौरव होना चाहिए। उसमें से यशपाल जी के जीवन की घटना आपको बताऊं, मेरे साथ ही घटित हुई वो 1993 में। सबसे पहले वहीं पर ये जो प्रतिभाओं के सम्मान की बात आई थी वहीं से शुरू हुई थी 93 से। और तब यशपाल जी को आमंत्रित किया था कि वो प्रतिभाओं का सम्मान करें और उनका स्वयं का भी सम्मान किया गया था उनके अपने कार्यों के लिए, उनके जीवन के लिए। वे जिस घर में रुके थे उससे विदा लेने के बाद दिल्ली पहुंचकर उनका लेटर आया, कार्ड पर आया कि मेरी बनियाइन शायद आपके घर में छूट गई है, आप अगर मिल जाए खोज करके तो मुझे भेज दें किसी आने जाने वाले के हाथ से। बस इन लोगों ने ढूंढी, नहीं मिली, तो इनने सोचा कि अरे अपने को बनियान के बराबर, क्योंकि खादी की
हमने इन चीजों को संभाला नहीं है, इनका अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं। जल की कमी हमारे जल के अतिरिक्त अपव्यय का कारण है, बिजली की कमी हमारे बिजली के दुरुपयोग का रोज देख रहे हैं अपन। व्यर्थ ही हम इन चीजों को, वनस्पति हमें तो बढ़िया सा फर्नीचर चाहिए, चाहे जितने पेड़ कटें हमें इससे क्या मतलब। हमें तो बढ़िया चौड़ा रास्ता चाहिए, रास्ते किनारे के बड़े बड़े लगाए गए 50-50 साल के पेड़ कट जावे तो कट जावे, हमको तो चौड़ा रास्ता चाहिए। हमारी
थी वो बाजार की बनी हुई बनियान नहीं थी, खादी खरीद करके उसकी बनाई थी, खादी पहनते थे। तो वो उसका कपड़ा लेकर के, और कपड़ा नहीं लेंगे तो उतने रुपए दे देंगे, वो अपनी अपने पसंद की बनवा लेंगे। दिल्ली जाने वाला व्यक्ति ऐसा लेकर के गया। वो जो वहां घटना हुई वो आकर के मुझे सुनाई कि महाराज उन्होंने अपनी बनियान के पैसे लेने से भी इनकार कर दिया और बनियान का जो कपड़ा लेके गए थे वो भी इनकार कर दिया। हमने बहुत मैंने विनय करी कि आप ले लें, तो उन्होंने बहुत हंस करके मुस्कुरा करके कहा कि नहीं, आप ये मत समझिए कि मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, मैं स्वयं भी अब 2 महीने तक नहीं बनवा सकता, दूसरी बनवाएं। क्यों? गांधी जी ने यही मुझे कहा था कि अपने लिए जो कुछ भी आपने रख रखा है उसका ठीक से उपयोग करना, और अगर उसमें असावधानी हो जावे तब फिर उसका पनिशमेंट अपने हाथ से ले लेना। मेरी असावधानी से मेरी बनियाइन गुम गई है, अब वो बनियाइन 2 महीने तक मेरे काम आती, इसलिए मैं 2 महीने तक नई बनियान नहीं बनवाऊंगा, एक ही से काम चला लूंगा, उसे ही धो करके पहन लूंगा, दूसरी नहीं बनवा, आपसे भी नहीं लूंगा, मैं अपने पैसे से भी नहीं बनवाऊंगा। ये क्या चीज है, कैसा लग रहा है? अपन तो नहीं कर सकते, अपन तो 3-4 स्फीयर में रखते हैं, गुम उम गई तो गुम जाए, अपन दूसरी पहन लें, है कि नहीं? अपन बने तो बड़े धर्मात्मा फिरते हैं, हाँ वैसे बोलो बहुत धर्मात्मा बने फिरते हैं, लेकिन अपने जीवन में तो ये बात है नहीं। तब तो फिर अपने धर्म पर चिन्ह तो लगी गया, प्रश्न चिन्ह तो लगी गया। इतनी चीजें हैं हमारे जीवन में, हम उन लोगों को धर्मात्मा नहीं समझेंगे, कौन हो सकता अपने को धर्मात्मा मांगने, तिलक विलक लगाए हुए, बढ़िया पंचा पहने हुए, लेकिन देखिए अपन की अपनी लोलुपता कितनी है, अपनी आसक्ति कितनी है, कितना व्यर्थ प्रमाद। असावधानी है कि मैंने गुमा दिया, असावधानी है कि मैंने उस चीज को डैमेज कर दिया जो बहुत समय तक काम आती, हमने उसको और इस तरह से असावधानीवश नष्ट कर दिया, ये प्रमाद ही तो है। दूसरा उदाहरण खुद गांधी जी के जीवन का, प्रयाग में और आनंद भवन नेहरू जी का, उसमें एक मीटिंग रखी गई कांग्रेस की जिसमें गांधी जी गए,
और भी बहुत सारे नायडू थी। अब ये सब लोग सवेरे से और मुंह हाथ धो रहे हैं, अपना अपना लोटा लिए हुए और बातचीत भी करते जा रहे हैं। अब हुआ ये कि बातचीत करने में असावधानी तो हो ही जाती, असावधानी हो जाने से वो लोटे का पानी तो पूरा खत्म हो गया लेकिन मुंह ठीक से नहीं धुल पाया। हाँ, अब गांधी जी चौंके, जैसे पानी पूरा खत्म हुआ और मुंह तो ठीक से नहीं धुल पाया था, कुल्ला भी नहीं कर पाया, दातून नहीं हो पाई, जबकि रोज तो आधा पानी बच जाता है दातून के बाद में मुंह हाथ धोने के लिए भी, और आज तो पूरा भी खत्म हो गया। तो थोड़े चिंतित से हुए तो नेहरू जी बोलते कि बापू, आपके चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां प्रयाग में बैठे, प्रयाग में संगम है दो दो नदियों का, यहां आपको क्या कमी है जो आप इतने चिंतित हो रहे हैं एक लोटे पानी खत्म हो जाने से। और लाओ भाई एक लोटा पानी और बापू के लिए लाओ। नहीं, वो दोनों नदियों का संगम यहां सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो जो नदी बहती है उसका सारा पानी मेरे लिए नहीं है, मेरे उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उस पर ही मेरा अधिकार है, और आज मैंने अपने उपयोग में जितना पानी मुझे मिला था उतना नष्ट कर दिया और अपना दैनिक कार्य भी पूरा नहीं कर पाया, इस चीज का मुझे दुख है। ये ऐसे लोग हैं जो अग्नि जल वायु वनस्पति इन छोटे छोटे एकिंद्री जीवों के भी व्यर्थ विघात से बचने वाले लोग हैं, बताइए। और हम इन पंचभूत तत्वों के बारे में जरा भी विचार नहीं करते, इन सब में भी जीवन है। आचार्य भगवंत तो इन सब के भी बचाने के लिए कह रहे हैं। आज जितनी भी इकोलॉजी और जितनी भी एनवायरमेंटल जो साइंस डेवलप हुई, जिसको आप क्या बोलते हैं उसका नाम एकदम भूल गया, पर्यावरण, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो क्यों डिस्टर्ब हुआ है, पूरा पर्यावरण पोल्यूशन क्यों हुआ है, हमने इन चीजों को संभाला नहीं है, इनका अतिरिक्त दोहन कर रहे हैं, जल की कमी हमारे जल के अतिरिक्त अपव्यय का कारण है, बिजली की कमी हमारे बिजली के दुरुपयोग का, रोज देख रहे हैं अपन, व्यर्थ ही हम इन चीजों को, वनस्पति हमें तो बढ़िया सा फर्नीचर चाहिए, चाहे जितने पेड़ कटे हमें इससे क्या मतलब, हमें तो बढ़िया चौड़ा रास्ता चाहिए, रास्ते किनारे के बड़े बड़े लगाए गए 50-50 साल के पेड़ कट जावे तो कट जावे, हमको तो चौड़ा रास्ता चाहिए, हमारी गाड़ी हमने खरीदी 120 किलोमीटर रफ्तार वाली तो वो चलनी चाहिए, ये हम लोगों का सोच है। हम भले ही और बहुत सारी धर्म की चीजें कर ले हुए, लेकिन जब तक ये सोच हमारा नहीं बदलेगा, जब तक हमारे मन वचन काय से इस तरह व्यर्थ की जो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति है वो नहीं रुकेगी, तब तक हमारा जीवन अनुशासित और तब तक हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठ सकता। प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने जीवन में इन सब चीजों को मर्यादित करें और इन सब चीजों से बचें जो कि हमारे जीवन और दूसरे के जीवन के अपकार में कारण बनती हैं, जिनसे किसी का कल्याण नहीं होता बल्कि दूसरे का अपकार ही होता है। ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हे गुरुवर,
जीवन को निरंतर एक गलत दिशा में ले जाते हैं और सचेत नहीं हो पाते हैं। मानसिकता को बदलने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। पहला उपाय है मन के स्वास्थ्य के लिए कि हमारा सोच धनात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड। हम जो भी सोचें वो धनात्मक सोचें, क्योंकि सोच दोनों प्रकार का होता है, किसी भी चीज के बारे में, अच्छी चीज के बारे में भी हम चाहें तो अपनी मर्जी से बुरा सोच सकते हैं, बुरी चीज के बारे में भी हम चाहें तो अपनी मर्जी से अच्छा सोच सकते हैं। ये हमारी च्वाइस है, हम इतने स्वतंत्र हैं, और तीसरी और चॉइस हमारे पास है कि ठीक को ठीक कहना, अठीक को अठीक कहना, यानी गलत को गलत कहना, सत्य को सत्य कहना, और वैसा ही व्यवहार करना, ये भी हमारी चॉइस है। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम ठीक को भी गलत के कैडर में डालते चले जाते हैं और गलत को भी ठीक मान करके अपना जीवन जीते चले जाते हैं। मानसिक रूप से हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जो जैसा है वैसा नहीं देखता, वैसा नहीं सोचता, वैसा नहीं मानता, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ ही तो माना जाएगा। तो अपने विचारों के मामले में भी हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा कि हम किसी भी विचार को किस तरह करते हैं। और दूसरा स्टेप है धनात्मक सोच के लिए, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालने की प्रक्रिया कर रहे हों। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालने के लिए तत्पर होता है, वो कभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो दोनों तरह से लागू होगी। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखना, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलाना, और जब भी अपने सुख का विचार आवे तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए उपाय तो करना, लेकिन उन उपायों में ये ध्यान रखना कि दूसरे का अहित तो नहीं होता है। मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दांव पर तो नहीं लगाता, या कि मैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे की परवाह करता हूं या नहीं करता। और हम गौर से देखेंगे कि हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, और ना ही हम अपने जीवन और दूसरे के जीवन में के बारे में ठीक ठीक सोच पाते हैं। बहुत सारी तो पूर्व धारणाएं हम व्यक्ति और वस्तु के बारे में बना लेते हैं, और फिर हम वैसा ही उस वस्तु और व्यक्ति को देखते हैं जैसा कि हमने उसके बारे में अपना विचार निश्चित कर लिया है पहले से, जिसको प्रीजुडिस बोलते हैं, पूर्व धारणा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक निर्धारित हमारा मापदंड हो जाता है, फिर वो व्यक्ति कैसा भी हो हम उसके बारे में ठीक ठीक विचार नहीं करते हैं, जैसा हमने सोच लिया है वैसा ही करते हैं। हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है अपने सोच को ठीक बनाने की। सोच दो तरह से हमारा ठीक बन सकता है, कि हम अपनी पूर्व धारणाएं ना बनाएं और अपने सुख के लिए दूसरे का जीवन दांव पर ना लगाएं। इतनी सजगता आवश्यक है। असल में हमें अपना सुख तो सुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह अपना दुख तो दुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति, पूरी जिंदगी उसकी निकल गई दुख में निकल गई। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इतना दुख मेरे हिस्से में क्यों आया। हर आदमी को ऐसा लगता है कि दुनिया का जितना दुख है वो मेरे हिस्से में आया है, दूसरे के हिस्से में तो सुख आया है। अच्छा, और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाहर से दिखाई पड़ता है, भीतर से तो सिर्फ हम अपने को देख पाते हैं। और मजा हम लोगों के साथ ये है कि हमें अपने को भीतर से देखना चाहिए, तो हम अपने को देखते हैं बाहर से, और दूसरे को देखना चाहिए भीतर से तो उसको देखते हैं बाहर से, और दूसरा बाहर से ठीक नजर आता है और हम भीतर से अपने को ठीक नजर आते हैं। और वो व्यक्ति हमेशा भगवान से कहता था कि मैं बहुत दुखी हूं यहां पर। उसे सारा संसार सुखी मालूम पड़ता था, सिर्फ स्वयं वो अपने को दुखी समझता था। और जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने को ही और अपने दुख को बड़ा मान के चलता है, तब वो अपने अपने या दूसरे के सुख के लिए अपने छोटे मोटे सुखों को छोड़ नहीं सकता। बहुत कठिन है दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देना। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डाल देना जितना आसान है, उतना आसान ये नहीं है कि अपने दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देना। ये दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियस चलती हैं। अब क्या हुआ, कहते हैं एक बार भगवान ने उसकी सुन ली कि वाकई ये बहुत जिंदगी हो गई, इसको बहुत दुखी है। तो एक दिन उसको सपने में ऐसा आया कि सुनो, तुम कल ऐसा करना कि वो जो एक कॉमन हॉल है इस गांव में जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ऐसा करना कि अपने जितने दुख हैं उनकी एक गठरी बांधना और वहां पहुंच जाना, हम तुम्हारे दुख बदल देंगे। हर व्यक्ति अपने दुख दूसरे से बड़े करके बताता है, और ऐसा ही हुआ। वो स्वप्न अकेले उस व्यक्ति को नहीं आया, बड़ा मजा हुआ कि गांव के सब व्यक्तियों को वही स्वप्न आया। सबने अपनी अपनी गठरी बनाई और सिर पर रखी और चले। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अरे, हमने तो बहुत कोशिश करके बड़ी बनाई थी, इसकी तो ज्यादा बड़ी है। अब अभी तक जब वे रास्ते में मिल जाया करते थे तो पूछते थे कैसे हो, तो कहते थे बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज तो बाहर दिख रहा है उनकी गठरी से बड़ी मालूम पड़ रहा है कि ये दुखी हैं। अभी मिलने पर जरूर कहते थे कि नहीं, सब ठीक चल रहा है। किसी से भी रास्ते में आप मिलिएगा और सबसे पहले उससे पूछिए कैसा है, सब ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है ये वो भीतर भीतर जानता है, लेकिन जिस दिन मौका आया अपने दुख को बड़ा करने का, उस दिन सबने अपनी अपनी गठरी बड़ी बना ली। अब सब सोच में है कि देखें क्या होता है। सब उस कॉमन हॉल में पहुंचे तो फिर वहां आकाशवाणी हुई कि सब लोग अपनी अपनी दुख की गठरी यहां पर एक तरफ रख दें, खूंटे पर टांग दें। बहुत सारे खूंटे थे वहां पर, सबने अपनी अपनी गठरी खूंटे पर टांग दी। फिर उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सब अपने अपने दुख से दुखी है ना, इसलिए, और सबको अपने दुख ज्यादा बड़े मालूम पड़ते हैं, इसलिए अब सबको बिल्कुल पूरी छूट दी जाती है। वो दूसरे की जिसकी गठरी लेना चाहे वो उसकी गठरी ले ले, अपनी अपनी छोड़ दे वहीं पर। और कहते हैं कि इतनी आपाधापी मची, इसके बावजूद भी किसी ने किसी की गठरी नहीं ली, अपनी ही गठरी वापस ले। लोग ये सोच रहे थे कि अब हम दौड़ करके उसके दुखों की गठरी शायद उसकी छोटी मालूम पड़ गई, लेकिन जब उनने सबकी गठरी देखी तो हर आदमी को ऐसा लगा कि मेरे दुख की गठरी छोटी है, और सबसे बड़ी चीज कि मेरे दुख ये जो है ना, वो मेरे भोगे हुए हैं और भोग लूंगा। दूसरे के ले लूं तो पता नहीं भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा। दूसरे के दूसरे प्रकार के दुख है, मेरे दुख तो मेरे अद्भुत हैं। ऐसा सोच करके और सबने अपने अपने दुखों की गठरी फिर से अपने हाथ में ले ली। ये कहानी हमें क्या क्या शिक्षा दे रही है? यही कि हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं, और अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम दूसरे को भी दुख में डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि शायद हमसे भी ज्यादा इस संसार में और कोई भी दुखी है, मुझे अपने सुख छोड़ करके उसे सुख पहुंचाना है। अगर हर आदमी दूसरे को दुखी ना देख करके सुखी देखना चाहे तो सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तो वही होगा। जो दूसरे को सुखी देखना चाहता है उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। ये है धनात्मक सोच, ये है पॉजिटिव अप्रोच। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने को सुखी देखना चाहता है और दूसरे के दुखों की भी चिंता नहीं करता, ना उसके सुख की चिंता करता है, वो कभी भी स्वस्थ मानसिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक और बहुत छोटी सी घटना, शायद हमें एहसास हो इस बात का। मैं सोचता हूं कि हमें चीजों का एहसास होना चाहिए। चीजें तो हम समझते हैं लेकिन हम उन चीजों का एहसास नहीं कर पाते हैं। श्रीमद् रायचंद का उदाहरण आता है, सब उससे परिचित हैं शायद, उनके अपने जीवन की घटना है। वो बहुत बड़े जौहरी थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, और एक बार कोई कमिटमेंट हो गया, सौदा तय हो गया कि इस दाम पर हीरे वो व्यापारी रायचंद को देगा। और दूसरे दिन भाव इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो व्यापारी बहुत मुश्किल में पड़ गया कि क्या करूं। अगर इतनी कीमत पर वो रायचंद को हीरे देता है तब तो उसका घर भी बिक जाएगा, उसकी दुकान भी बिक जाएगी। उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया। सब दूर ये खबर फैल गई, रायचंद साहब के पास भी ये खबर पहुंची कि व्यापारी बहुत दुखी है। जिस दिन से उसका सौदा हुआ है उस दिन से भाव बढ़ जाने के कारण वो बहुत दुखी है, न ठीक से सो पाता है न खा पाता है, बाहर किसी से मिलता भी नहीं है। तो कहते हैं कि रायचंद उसके घर पहुंच गए और जैसे ही घर पहुंचे तो वो और घबराया और उसने कहा कि क्षमा करें, सौदा तो हुआ है पर मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, आप क्यों आए व्यर्थ में। उन्होंने कहा आया हूं मैं, बहुत जरूरी है मुझे आपसे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा बताइए मैं क्या करूं, आप निश्चिंत रहिएगा मैं आपका पूरा चुका दूंगा। बोलते चुकाने उकाने वाली बात नहीं है, वो जरा कागज लाओ जिस पर यह सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या आवश्यकता है इसकी, मेरा विश्वास तो रखिएगा। उन्होंने कहा विश्वास है मुझे, कागज तो लाओ। और कहते हैं कि कागज हाथ में लेकर के और कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि ये रायचंद से हुआ था तुम्हारा सौदा, रायचंद दूसरे आदमी से दूध मांग सकता है पीने के लिए, उसका खून नहीं मांग सकता। तुम आज दिन से इतने दुखी हो इस छोटे से कागज पर हुए सौदे की वजह से, तो ऐसे सौदे तो कई बार होते रहते हैं, तुम इसकी वजह से नाहक दुखी मत हो। मेरे सुख के लिए तुम अगर दुखी हो तो इससे ज्यादा दुख की मेरे लिए कोई बात नहीं। कोई मेरे सुख के लिए चिंतित है तो फिर मुझे उसके सुख के लिए कितना चिंतित होना चाहिए। यह है पॉजिटिव अप्रोच। हमारे अपने जीवन के बारे में हम कभी सोचें, कई बार सोचता हूं इस बात को, आपसे भी कहता हूं कि एक छोटा सा जीवन जीने के लिए हमें कितने लोगों की मदद लेना पड़ती है। सुबह से शाम और रात तक पूरे जीवन में शायद एक एक सांस जो हम लेते हैं उसके लिए कितने लोगों की मदद है, लेकिन किसी के प्रति भी हमारे रोम रोम से धन्यवाद नहीं निकलता। पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हो पाता है। इसीलिए तो शायद हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हम कुछ पा लेते हैं तो धन्यवाद देना तो दूर, जब नहीं पा पाते हैं तो शिकायत जरूर करते हैं। ऐसा मन वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को स्वस्थ नहीं बना सकता। मैंने तो अभी पिछले दिनों जो बात पढ़ी है वो बात पढ़ करके बहुत चौंक गया हूं मैं। उनका कहना है कि हिंसा वे ही लोग करते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। हिंसा का रूट कॉज जो साइंस है उसका कहना है कि हम बाहर बाहर से अहिंसा की बहुत बात कर रहे हैं, हिंसा का जो मूल तत्व हमारे भीतर छुपा है वो है हमारी रुग्ण अस्वस्थ मानसिकता। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम अहिंसक नहीं हो पाएंगे। मन की अस्वस्थता मतलब राग द्वेष। हमारे यहां आचार्य भगवंतों ने इसीलिए शायद बड़ी परिभाषा लिख दी कि राग द्वेष योर हिंसा। जहां तक मेरे मन में राग और द्वेष है वहां तक हिंसा ही है। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहली चीज कि हमारा अप्रोच पॉजिटिव हो, हम हर एक चीज में से कुछ अच्छा निकाल लें, बेहतर निकाल लें, उसमें से बुरा वहीं के वहीं छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु पूर्णतः अच्छी नहीं होती न पूर्णतः बुरी होती है। अच्छी और बुरी सब चीजें एक साथ हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। दूसरा स्टेप है, अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परिस्थितियों से हम सामंजस्य कितनी जल्दी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। परिस्थितियों से जो जितनी जल्दी सामंजस्य कर लेता है वो व्यक्ति उतना स्वस्थ है। परिस्थितियां
हमें हमेशा मजबूर करती हैं, हमें बाध्य करती हैं बहुत बहुत कुछ करने के लिए, सोचने के लिए, शरीर से करने के लिए, वाणी से बोलने के लिए। लेकिन मन, वचन और काय, इन तीनों को अगर परिस्थितियां मजबूर भी करें, तब भी मुझे उन परिस्थितियों में अपने मन, वचन, काय को कैसे संभाल लेना है, कैसे समायोजन कर लेना है, कैसे एडजस्टमेंट कर लेना है, ये जो जितनी जल्दी करेगा वो उतनी स्वस्थ मानसिकता वाला माना जाए। और हम सामंजस्य दो प्रकार से करते हैं, सुविधा के द्वारा भी करते हैं और सहिष्णुता के द्वारा भी करते हैं। दोनों शब्दों पर जरा सा विचार करिएगा। जैसे कि ठंड लगी तो अगर हम सुविधा भोगी होंगे तो जल्दी से हीटर चालू कर लेंगे, ये एक ढंग है। अगर हमको गर्मी लगी तो हम जल्दी से सुविधा भोगी हैं अगर, तो सामंजस्य करने के लिए हम कूलर चालू कर लेंगे, पंखा चालू कर लेंगे। समायोजन का एक तरीका यह भी है कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बाहर से कोई ना कोई उसकी रेमेडी, उसका कोई ना कोई उपाय, बहुत बाहरी उपाय करते हैं, वो भी आवश्यक है। लेकिन जो एक बहुत भीतरी उपाय है, कहते सहिष्णुता, समायोजन के लिए बाहर से सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं, उतनी अधिक भीतर से सहिष्णुता भी आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना सहिष्णु होगा, जितना सहनशील होगा, वो जल्दी से परिस्थितियों से एडजस्ट कर लेगा और अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखेगा। शीत आई है, ठीक है, मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ा लेता हूं ताकि उस शीत को सहन कर सकूं। दूसरा व्यक्ति डिपेंड है कि उस शीत से बचाव के लिए वो हीटर या कि और कोई उपाय, वूलन या जो भी उसे उपाय करना है, शीत से बचाव का वो बचाव का उपाय कर रहा है, पर उसमें पराश्रितता है और सहनशीलता हमारे अपने आत्माश्रित है। क्या हम इस तरह परिस्थितियों से जहां जैसी आवश्यकता है, जहां सुविधाओं की जुटा सकते हैं तो हम सुविधाएं जुटा लें, और जहां सहिष्णुता आवश्यक है क्या हम वहां जल्दी से और अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके अपने को सहिष्णु बना पाते हैं क्या? जितनी जल्दी जो इस चीज को कर लेगा वो उतने जल्दी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तीसरी बात, अपने मन को संस्कारित करना, अपनी चेतना को संस्कारित करना। ये चेतना को संस्कारित करने की प्रक्रिया इन दिनों हम बहुत कम कर पा रहे हैं। चेतना को संस्कारित करते तो हैं लेकिन गलत चेतना को संस्कारित करते हैं, ठीक ठीक अपनी चेतना को हम संस्कारित नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि चेतना को हम सजग होकर, सावधान होकर के संस्कारित करें। जैसे कि हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम चेतना को संस्कारित करें ताकि वो चेतना गलत ना कर पाए। जैसे कि आज हम गलत करने के लिए बहुत संस्कारित हैं, हमसे बहुत जल्दी गलत हो जाता है, क्या हम उतनी ही आसानी से जो सही है उसे कर पाएंगे? इसकी तैयारी के लिए कहते हैं कि अपनी चेतना को हम निरंतर अच्छाइयों से संस्कारित करते चले जाएं तो हमारी मानसिकता हमेशा स्वस्थ रहे। बहुत छोटे से उदाहरण, सुकरात के जीवन का उदाहरण है। जब उनके एक शत्रु ने यह कहा कि मैं सुकरात से बदला लेकर के और चैन से बैठूंगा, बिना बदला लिए मैं सुकरात से चैन से नहीं बैठूंगा, तो सुकरात को जब वो व्यक्ति मिल गया रास्ते में तो उसको गले लगा करके बोले कि अगर तू मेरे से बदला लेके चैन से नहीं बैठेगा तो मैं तेरे को मित्र बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, और उसको उसी समय गले लगा लिया। अब करो क्या करते? अब कैसे इस आदमी से बदला लिया जा सकेगा जो आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, अगर तुम मेरे से शत्रुता के लिए चैन से नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना चैन से नहीं। रामतीर्थ उतरते हैं अमेरिका में एरोप्लेन से नीचे, और एक व्यक्ति उनको देखता है कि शायद वो किसी को ढूंढ रहे हैं, तो पास जाके कहता है रामतीर्थ से कि आप लगता है भारत से आए हैं, क्या यहाँ आपका कोई परिचित नहीं है जो आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हो, शायद आप ढूंढ रहे हैं। तो रामतीर्थ फौरन उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि तुम ही तो मेरे मित्र हो, शायद तुम ही मुझे लेने आए, और कहते हैं कि वो उनका उसी क्षण मित्र बन गया, और जब तक वो अमेरिका में रहे तब तक उनके साथ रहा। कि इस तरह मित्रता के लिए तो किसी ने मेरे से हाथ ही नहीं बढ़ाया, हम शत्रुता के लिए जितनी जल्दी तत्पर होते हैं और दूसरे से मित्रता की जितनी अपेक्षा रखते हैं, शायद दूसरे को उतनी आसानी से अपनी मित्रता का हाथ नहीं दे पाते हैं। यही हमारी मानसिकता का मापदंड है। हम माप सकते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हम अपने जीवन को कैसा हमने संस्कारित किया है। इतने ऑल ऑफ सडन, इतने जल्दी जो व्यक्ति इतना सजग होगा, सावधान होगा, वही जो जितना संस्कारित होगा वो ऐसे ऐसे जवाब दे सकता है। सामान्य व्यक्ति के हम और आप से अगर कोई इस तरह कहे कि हम बदला लेके देखेंगे तो हम क्या कहते, हाँ बहुत देखे ऐसे कर लियो जो कछु करने हो। हमारी मानसिकता, हमारे संस्कारों में सबसे पहले यही आता, हमारे संस्कार में शायद ये नहीं आता कि हम उसको गले लगा लेंगे, अच्छा तो मुझे शत्रु बना के छोड़ते हो, मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना नहीं रहूंगा। इतना मजे से हम शायद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, हमें ये सोचना है, नहीं कर पाते ये स्वीकार कर लो, ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं कि हाँ भाई नहीं कर पाते, लेकिन क्यों नहीं कर पाते, वजह क्या है? वजह कहीं बाहर नहीं है, मेरे ही भीतर है। असल में मैंने अपनी चेतना को संस्कारित नहीं किया है, अब मुझे अपनी चेतना को ऐसा संस्कारित कर देना है। एक मुस्लिम फकीर के बारे में तो ये आता है कि जब उससे ये कहा गया कि शैतान से घृणा करो, तो उसने घृणा शब्द वहां से हटा दिया। उसने कहा कि मैं तो जब दूसरे और लोगों ने कहा कि तुमने इसमें से घृणा शब्द भगवान का लिखा हुआ है कि शैतान से घृणा करो, तो उसने कहा कि भगवान अगर मेरे भगवान है तो ऐसा कह नहीं सकते, ये तो किसी ने गलत लिखा है। और फिर मैं घृणा तो मैं किसी से नहीं कर सकता, मेरे भीतर तो सिर्फ प्यार है, मैं घृणा कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने घृणा शब्द ही उसमें से अलग कर दिया। इतना अधिक हमने अपनी चेतना को संस्कारित कर लिया कि हम शैतान से भी घृणा नहीं कर सकते हैं। शैतानियत से घृणा करना अलग बात है, शैतान से घृणा करने का अपने यहां नहीं दिखा, लेकिन हम कदम कदम पर अगर जरा भी हमारे मन का नहीं होता है तो हमारे भीतर की चेतना इतनी संस्कारवान है कि बहुत जल्दी उल्टा ही सोच लेती है। हम ठीक ठीक अपनी चेतना को संस्कारित करने के लिए अगर थोड़ी सी भी तत्परता दिखाएं तो हमारे जो संस्कार पुराने जो हमें ही तकलीफ देते हैं वे संस्कार हम तोड़ सकते हैं। और चौथी बात, कर्तव्य बोध, ये धीरे धीरे कम होता चला जाए। कर्तव्य बोध और दायित्व बोध दोनों दो चीजें और समझने की हैं आज के दिन। बस मेरे ख्याल से अपने जीवन को, अपनी मानसिकता को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें इतना पर्याप्त है। फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, आज इतना ही। लगता तो यह है कि जैसे कर्तव्य बोध और दायित्व बोध दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या काम किस समय करना, ये है कर्तव्य बोध। क्या काम किस समय कर लेना,